शांति। राजयोग के प्रयोग द्वारा बाप दादा का नाम रोशन करने वाले आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता डॉक्टर सतीश भाई जी का हमारे इस डबल लाइट योग तपस्या साधना भट्टी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी एक हाथ की ताली से, सब एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी और मेडिसिन के हैं, डायरेक्टर ऑफ ट्रॉमा सेंटर तलहटी, डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन, डायरेक्टर ऑफ 3D हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, जिसका उद्देश्य है हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी माइंड। 1986 में आपको ज्ञान मिला 1995 में ग्लोबल हॉस्पिटल और उसके नीचे जो भी ब्रांचेस थे उस सब में आप अपनी सेवाएं देते रहे समर्पित रूप से। और हमारी बड़ी दादी जी, दादी जी प्रकाशमणि जी के भी आप पर्सनल डॉक्टर रहे। 26 वर्षों से भी अधिक समय तक कैड रिसर्च प्रोजेक्ट जो चला है, ये प्रोजेक्ट माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल DRDO के साथ मिलके स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के स्पॉन्सरशिप में हुआ। और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि राजयोगा मेडिटेशन के प्रयोग से जो ब्लॉकेज है हार्ट का वो ओपन हो गया। ये एक मेडिकल साइंस का मिराकल था मेडिटेशन के द्वारा, जिसका आपने प्रैक्टिकल प्रयोग हजारों से करवाया। आपके नेतृत्व में 12 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी 2006 से 2017 के बीच में ये 12 क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस हुआ, और जिसको आपने ऑर्गेनाइज किया तो 14,000 कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन इसमें भाग लिए। मतलब पूरे मेडिकल जगत में एक बार तो बाबा का संदेश और राजयोग का परचम आपने फैला ही दिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा 2006 में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको नवाजा गया। 2010 में फिर से आपको यही वाला अवार्ड मिला दिल्ली के CM शीला दीक्षित के द्वारा। ये अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुनः आपको प्राप्त हुआ। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के आप लाइफ मेंबर हैं, आपका प्रोफाइल बहुत लंबा है। अगर वो सब मैं सुनाने जाऊं तो पूरा आधा घंटा लग जाएगा, परंतु शॉर्ट में वर्तमान समय पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन थ्रू हेल्दी एंड हैप्पी हार्ट लाइफस्टाइल मॉड्यूला मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट के आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी धैर्यता, आपके ज्ञान की गहराई, योग की गहराई, अथक परिश्रम और कार्य के प्रति आपका समर्पण भावना बेमिसाल है। और आज का जो टॉपिक है वो आज आपके ही कार्य के अनुरूप है कि ज्वाला स्वरूप, जो हमारा इस महीने का अभ्यास भी चल रहा है कि याद को ज्वाला स्वरूप कैसे बनाएं, इसके ऊपर आप हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। चलिए हम सभी एक मिनट के लिए वापस इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को समेट अशरीरी आत्मा बन परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। चलिए उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाते हैं। ओम शांति। याद को ज्वाला स्वरूप कैसे बनाएं? हम सभी बाबा के चुने हुए दिव्य ब्राह्मण जन्मदारी बच्चे हैं। बाबा ने हमें कहां कहां से चुना है और हमारा लक्ष्य है वापिस घर जाने का। इसी विषय पर तो गहराई से समझते हैं कैसे हमारी याद, पहले तो ज्वाला स्वरूप याद क्या है, उस स्थिति कैसे बने और इसके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, क्या हम हमारे लक्ष्य क्या है और हमें उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। पहले आप सभी जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं याद के लिए कहते हैं ना, सहज योगी, स्वतः योगी और आगे कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी, निरंतर योगी, ऐसे बोलते हैं ना। निरंतर योगी के बाद फिर आती है ज्वाला स्वरूप याद, क्योंकि जब याद, ज्वाला स्वरूप याद क्या है, ज्वाला स्वरूप याद को तपस्या भी कह सकते हैं, और थोड़ी देर में समझ जाएंगे तपस्या क्यों कहते हैं। ज्वाला स्वरूप याद और तपस्या एक ही चीज है, क्यों ऐसा है। तो पहले तो समझते हैं सहज याद या सहज योगी या सहज याद किसे कहते हैं। सहज याद से कहते हैं जब आपका स्नेह हो जाता है, एक बाप से स्नेह हो जाता है ना, जब जैसे लौकिक में भी जब किसी से स्नेह प्यार हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, याद सहज हो जाती है ना किसी का। वैसे भी लौकिक में किसी व्यक्ति का किसी स्नेह हो गया, जानते भी नहीं, संबंध भी नहीं है ना, तो क्या होता है, उसकी याद सहज हो जाती नहीं हो जाती। किसी आजकल दुनिया में कहते हैं लौकिक में कुमार कुमारी का भी स्नेह हो जाता, आपस में प्यार होता, तो क्या होता है, माता पिता के होते हुए भी, भाई बहनों के होते हुए भी, बहुत धन संपत्ति होते हुए क्या होता है, सारी उसकी सहज याद रहती है ना, नहीं होती है? सहज याद होती है ना। याद स्नेह का मतलब क्या है, स्नेह का अर्थ है तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। स्नेह का मतलब क्या है, प्यार का मतलब क्या है, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। इंग्लिश में स्नेह की परिभाषा है अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को कि बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान के साथ स्वीकार करना, उसकी बराबर पालना करना, अर्थात वो जैसा भी जिसकी भी किसी पार्ट लेकर तुम्हारे साथ से तुम्हारी, चाहे तुम्हारी महिमा करे या ग्लानी करे, दुख दे या सुख दे, उसको हम वैसी हालत में ही स्वीकार करके उसकी बराबर पालना करें, तुम्हारी महिमा करे चाहे ग्लानी करे। इसलिए प्यार की परिभाषा यही है कि हम जैसे भी थे, हम कहते हैं हम तो भगवान के लायक नहीं है कि भगवान के हम भगवान में प्यार करें, हमें अपना बना ले, अपनी गोद में बिठा ले, तो बाबा ने क्या कहा, तुम जो हो जैसे हो ना मेरे हो। और हमने क्या कहा, हमने बाबा को इस रूप में पूजा, आधा कल्प राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में और गणेश के रूप में और वैष्णो देवी के रूप में है ना, नहीं दुर्गा के रूप में, संतोषी माता के रूप में, यही तो कहा भगवान, यही तो भगवान समझाना कि तो हमें मिला, जब हमने हमने बताया शिव बाबा का, पता लगा शिव बाबा आया है ब्रह्मा के तन में, बूढ़े तन में आया है, और हमने उसको पहचान लिया। जो हमारे इतने सालों के बचपन से कॉन्सेप्ट थे, बचपन सिद्धांत क्या थे, भगवान ये है ना, फला देहधारी है ना, हमने उस दिन रात उसको पूजा था, उसी के सामने अपना सब दिल का हाथ रखा था, अब हमने देख लिया कि बाबा यही है, यही है, बस यही है, यही है, यही है। जब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारा स्नेह हो गया उसके साथ, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो उसका भी, तो क्या हुआ, ये है सहज याद। तो सहज याद किसके आधार पे होती है, स्नेह के आधार पे। तो हमारा स्नेह है बाबा से, ये पक्का है, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, और बाबा ने तो कह दिया पहले ही, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। फिर दूसरी होती है स्वतः याद। स्वतः याद कब आती है, किसकी याद आती है, जब से संबंध बन जाता है ना, स्नेह वाले संबंध हो जाते, क्या हो जाता है, स्वतः याद आती है ना, चाहो ना चाहो याद आती है ना, नहीं आती, अपने आप ही याद आती है ना, चाहो ना चाहो वो संबंध खींचता है, तो स्वतः याद रहती है। तो बाबा से हमारा सर्व संबंध हो गया, बाबा ने क्या कहा, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हर जगह, हर कर्म में, हर स्थान पर सरल संबंध से तुम्हारे साथ। और ऐसा अनुभव भी हम करते हैं अनुभव, हर स्थान पर, हर कार्य में और हर समय जैसा संबंध हमको चाहिए बाबा वैसा अनुभव करा देता है, नहीं कराता है। तो स्वतः याद रहती है, इसमें मेरा बाबा दिल से निकलता है, नहीं निकलता है। फिर होती है कर्मयोगी। आपने देखा होगा कभी कभी हम स्टेशन पर जाते हैं ना, कभी रात को, एक बार मुझे याद है दादी गुलजार जी भी थे और जयपुर आके हमारी ट्रेन रुक गई, हम दिल्ली से आ रहे थे, रास्ते में आके दिल्ली से रात को 12 बजे की ट्रेन रुक गई। रास्ते में कृष्णगढ़ के पास एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक पर, बहुत साल पुरानी बात है, शायद 90s की, अर्ली 90s की बात है, 92-93 की बात होगी। और दादी बैठे, हम स्टेशन में बैठे थे सभी, और दादी ने देखा एक बजे पकौड़े बनाते हैं ना स्टेशन पे, एक बजे आ गया। फिर दादी देखती रही आलू, उसने उबाले फिर छीले, तो दादी कहते थे कोई प्राप्ति के लिए थोड़े से पैसे 200-300 रुपये कमाएगा शाम तक। कितने बजे आया वो? एक बजे से आलू उबालना शुरू किया, छीले, अब छीलने को छील रहा है, फिर इसका क्या करेगा, फिर कैसे करेगा, और सारा दिन आलू बेचेगा किसके लिए? थोड़ी प्राप्ति के लिए ना। और तुम्हारी प्राप्ति कितनी है? कितनी प्राप्ति है? 21 जन्मों की तुम्हारी प्राप्ति है, क्या पूरे कल्प की प्राप्ति है? अभी तक अभी तुम्हें इस संगम के आधार पर मिल रहा है। तो कर्म योग, हर कर्म करते करते इसको किसकी याद है? एक बजे भी किसकी याद है? पकौड़े बनाने वाले को, पैसे की याद, प्राप्ति की याद है ना, कि मिलेगा ये मिलेगा। और हमारी प्राप्ति कितनी है? कितनी प्राप्ति है? एक एक सेकंड, एक एक वर्ष के बराबर है ना, एक एक सेकंड का करेक्शन पूरे 21 जन्मों से है ना, या तो यूं कहें 84 जन्मों से ही है। हम लोग जो है, हम जो बैठे हैं यहां पर, या लौकिक में हम माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे होते हैं, एक्चुअली ये 21 जन्मों के नहीं, 84 जन्मों के संबंध है। कितने जन्मों के संबंध है? 84 जन्मों के संबंध। वे कहते हैं ना, 12 व्यक्तियों से आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होता है, किसी भी आत्मा कनेक्शन 12 व्यक्तियों से बहुत ज्यादा होता है। इन 12 व्यक्तियों के साथ ही आप 84 जन्म इधर उधर होते रहते हैं। कितने जन्म? 12 व्यक्तियों के साथ इधर उधर होते रहते हैं। 7 जन्म का फेरा बोलते हैं ना, 12 का 7 से गुना करो कितना होता है? 84 ना। तो 12 आत्माओं से बहुत गहरा कनेक्शन है। अभी भी जो 12 आत्माएं आपके आसपास है ना, आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे है ना, भाई बहन मिला के देखो तो 12 के आसपास आ ही जाएंगे, है ना, इन्हीं में आसपास आगे पीछे होते रहते हो आप। 7 जन्मों का संबंध होता है ना, कहते ना, तो ये नहीं कि 7 जन्म पति से पत्नी का नहीं होता, भिन्न भिन्न संबंध बदलते रहते हैं। तो प्राप्ति का आधार क्या है? प्राप्ति के आधार पे कर्मयोग लगन लगी रहती है। अगर याद रहे कि मेरी क्या प्राप्ति है, मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, तो दिन रात श्वासों श्वास लगन लगी रहेगी, नहीं लगी रहेगी। और फिर होती है श्रेष्ठ योगी। तो इससे क्या हो गया? कर्म योगी। कर्म तो हम हमेशा कर रहे हैं ना, कर्म हमेशा हमेशा हो रहा है, हम देख रहे हैं तो भी कर्म हो रहा है, खा रहे हैं तो भी कर्म, हार्ट तो चल रहा है ना, आत्मा चला रही ना हार्ट को, कितने मिनट में चलाती है? 1 मिनट में 70 बार चलाती है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में हार्ट चलता है ना, नहीं? एक धड़कन तो होती है ना, एक धड़कन में 4-5 हिस्से होते हैं, एक धड़कन के 4-5 हिस्से होते हैं, 4 चैम्बर अलग अलग से कुड़ते हैं, फिर अलग फैलते भी हैं। तो 1 सेकंड 0.85 सेकंड में 5 तरह से हार्ट से कुड़ता फैलता है, नहीं? और फिर हर सेल में, हमारे बॉडी में 30,000 अरब कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका में 1 सेकंड में 1,00,000 रिएक्शन होती है, डेड बॉडी में तो नहीं होती है। तो आत्मा बिना कर्म के रह सकती है क्या? कर्म तो हर समय हो रहा है ना, और उसमें आपका अगर आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर कर्म कर रही है तो क्या हो रहा है? हर सेल में क्या जा रही है? साक्षी दृष्टा, ज्ञान माना साक्षी दृष्टा की स्थिति, साक्षी दृष्टा की स्टेज, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह, अतिंद्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियां हर सेल में जा रही है परमात्मा की याद में रह के कर रहे हो। और गुस्से में कर रहे हो तो, जल्दबाजी चिंता में कर रहे हो तो क्या होता है, हर सेल में क्या जा रहा है, जहर जा रहा है ना, जहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। तो ये हमें देखना कि कर्म योगी, हमारा कर्म योगी बनना, अगर वो प्राप्ति याद रहे, हमें क्या प्राप्ति हो रही है, 21 जन्मों के लिए हम क्या प्राप्ति कर रहे हैं, हमें ज्ञान गुण शक्तियों से अपने को भरपूर, उस पावर हाउस से कंबाइंड होकर पावर भरनी है और उसका आधार, उसी आधार पे हमको भविष्य में प्राप्ति होगी। अभी सुना था ना आपने, स्वराज्य का अधिकार आधार क्या, परसों की मुरली में स्वराज्य का आधार क्या है, याद है 7 तारीख की मुरली क्या थी, अगर स्वराज्य में आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पे हो जाए, उसका आधार क्या है, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, जितनी अधिक पवित्रता आती जाएगी, आत्मा क्या होते जाएगी, आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी, पावर उससे कंबाइंड होती जाएगी, क्योंकि वो तो है ही संपूर्ण पावर, पवन एवर प्योर है, जितना हम पवित्र होते जाएंगे उतना से जुड़ते जाएंगे, पवित्रता की अग्नि क्या करेगी, हम उससे एकदम कंबाइंड हो जाएंगे और आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर हो जाएगा, राइट। स्वराज्य का मतलब क्या है, आत्मा का राज्य, स्वमन आत्मा, आत्मा का राज्य किस पर, मन बुद्धि संस्कार पर, है ना। तो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हो गया तो बाकी तो अपने आप ही, स्थूल कर्मेंद्रिय तो बदलती रहती है हर शरीर के साथ, तो पूरा जो भविष्य में राज्य अधिकारी बन जाएंगे ना, राइट। तो ये हो गया हमारा कर्म योगी। श्रेष्ठ योगी किसे कहते हैं, श्रेष्ठ योगी इसे कहते हैं जब स्नेह संबंध और प्राप्ति एक से ही हो जाए, हमारा स्नेह भी एक से ही है, संबंध भी एक से ही है और प्राप्ति भी एक से ही है ना। ये नहीं स्नेह किसी और से, संबंध किसी और से, संबंध लौकिक में हो, स्नेह भगवान से हो, प्राप्त संबंध किसी, प्राप्ति कहीं और हो, बिजनेस में धंधे में बुद्धि लगी रहे, यहां से प्राप्ति इकट्ठी करनी है, नहीं ऐसा नहीं। जो कुछ लेना है स्नेह भी उसी से, संबंध भी उसी से और प्राप्ति भी उसी से। और ये जो स्थिति है ना श्रेष्ठ योगी की स्थिति, ये स्थिति तीनों यहीं की है, कौन कौन सी, सहज योगी, स्वतः योगी और कर्म योगी, कर्म यहां करना ना, तो ये स्थितियां यहां की है, स्नेह संबंध प्राप्ति के आधार पर होती है, लौकिक स्नेह लौकिक संबंध लौकिक प्राप्ति के आधार पर दूसरी तरह के योग लगा रहता है, किंतु यहां पर हमारा रूहानी सहज योगी स्वतः योगी और कर्म योगी बनते हैं, किंतु जब उसमें हम उस टोटल तीनों चीजें जब एक से प्राप्त कर लेते हैं, स्नेह संबंध प्राप्ति, तो हमारा कहां पहुंच जाते हैं, हमें अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, बाबा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है ना, बाबा से सर्व संबंधों की प्राप्ति होती है, भिन्न भिन्न संबंधों का बाबा से महसूस करना, मिलन मनाना, कभी माता से, कभी पिता का रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, कभी बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, 9 संबंध तो मुख्य हो गए ना। तो ये है अतिंद्रिय सुख के झूले, बाप और परमात्मा का मिलन, ये है अतिंद्रिय सुख का झूला, बाबा के साथ हम अनुभूति करें, आज की मुरली में भी था ना, आज की में था कल की में था, अतिंद्रिय सुख का झूला, किससे पूछना हो, किससे पूछूं, आज ही की मुरली में था, गोप गोपी के जो बृहस्पति की इस पे दशा होती है, जो देव और देके दुनिया से परे अपने मन बुद्धि से डिटैच हो जाते हैं, वो उस पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, और ऐसे ही ब्राह्मण क्या महसूस करते हैं, अतिंद्र सुख के झूले में झूलते रहते हैं ना, उनकी कभी भी उनकी देह भान की या देह अभिमान की मिट्टी में पैर नहीं रखते, वो लोग सदा ही झूले झूलते हैं बाबा के साथ के, या तो माँ बाप की गोदी में रहते हैं, या तो अतिंद्र सुख के झूले, या फिर दिल तख्त पे बैठे रहते हैं बाबा के ना, ऐसे बच्चे जिन पे बृहस्पति की दशा होती है। और तो ये स्थिति जो है अतिंद्र सुख की स्थिति है, जिसको हम श्रेष्ठ योगी कहते हैं, मतलब अर्थात श्रेष्ठ है वो सबसे ना, बस बाबा और बाबा के साथ सदा ही उसी के साथ चलते फिरते, क्योंकि संगम युग का सुख, संगम पे जिसने अत्यंत सुख का अनुभव नहीं किया उसने क्या किया, ब्राह्मण बन के क्या किया, कुछ किया? हम ब्राह्मण बन के फिर भी बाबा के साथ का अनुभव नहीं किया तो क्या प्राप्ति की, राइट? तो ये अत्यंत सुख, मतलब ये अभी हम जा रहे हैं ज्वाला स्वरूप याद की तरफ, उसके पहले की स्टेजेस नहीं है, सहज याद, स्वतः याद और कर्म करते सहर्ष कर्म करते बाबा की याद, और फिर श्रेष्ठ याद। ये सूक्ष्म वतन की विधेयी, देह में रहते विधेयी है, देह में है, अभी भी हम कहां हैं पर विधेयी है, हम यहां नहीं है, हम बाबा के साथ बस खोए हुए, बाबा की गोद में है, भिन्न भिन्न संबंध, जैसा समय जैसा स्थान जैसा कार्य उस अनुसार बाबा से हम संबंध में संबंध निभा रहे हैं, संबंध की पालना ले रहे हैं, पालना और प्यार ले रहे हैं, खोए हुए। और फिर आती है उसके बाद निरंतर याद है ना, जब सर्व स्नेही, पूरे विश्व में मुझे किसी से नहीं, बस एक ही है मेरा, सर्व संबंधी और सर्व प्राप्तियां एक बाप से है, लवली स्थिति है, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जो कुछ लेना उससे लेना है, किसी और की तरह देखना भी नहीं है। अगर आपके हार्ट में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक वही याद आए, उसी की याद आए, वो कुछ कहे कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ तो उसके पास जाओ, नहीं तो नहीं जाना है। ऐसी स्थिति, कुछ आपको लगे, कुछ हो, कुछ भी समस्या आ जाए, वो आपको साथ देवे, वो आपको टच करे, बच्चे ऐसे कर लो कि इतनी कैचिंग पावर, टचिंग पावर हो, इतना निश्चय हो कि वो ही सब कुछ है, राइट? कितने दूर है बाप हमसे, बाप कितने दूर है हमसे, एक सोच की दूरी पे है ना, सोचा और पहुंचा ना, नहीं है तो कंबाइन, किंतु फिर भी चलो भाई, हम कहते हैं वो अलग है, वो परमधाम में रहता है या सूक्ष्म वतन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ है, तो दूर कितना है फिर, सोचा और पहुंचा, एक संकल्प की दूरी पे है ना, और साथ है तो साथ कह रहे, कंबाइंड कह रहे, तो साथ राय लो ना, तुरंत राय लो ना कि बाबा ये बात हुई ऐसे करें, बाबा आप बताओ क्या क्या करें, कुछ भी समस्या कभी भी आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये वाली स्थिति जो ना निरंतर लवलीन स्थिति, एक दूसरे में समाये हुए, ये होता महारथियों का मिलन। महारथियों का मिलन कैसा होता है, बैठे और समाये, चलते फिरते समाये हुए रहते हैं, जैसे बड़ी दादी को हमने देखा, समाई रहती थी हमेशा, कार्य करते भी समाई हुई है, मुरली सुना रही है तो मुरली, जब ओम शांति में मुरली सुना रही है तो सारी क्लास उसी लहर में है, जिस लहर में से लहरें बहती थी, आप समझे जो पुराने भाई बहन हो सुनी होगी, सारी मुरली जैसे उसके जैसी मुरली किसी ने सुनाई नहीं। ब्रह्मा बाबा के रहते लास्ट दिन 18 जनवरी को बाबा की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो बाबा ने, दादी ने उसको कहा, बाबा को कहा, बाबा आज मैं मुरली सुनाती हूं, और बाबा दादी ने जाके मुरली सुनाई। तो बाबा के रहते मुरली पर जो था ना, जो कमांड, वो किसने सुनाई, दादी ने सुनाई, वैसी स्थिति है ना, ऐसी स्थिति दादी के साथ हमने देखा कैसी स्थिति होती है ना, लवलीन, आनंद में सदा खोई हुई है ना, कोई बोझ नहीं, हल्कापन, देह से न्यारी, एकदम विधेयी स्थिति। तो प्रैक्टिकल वो स्थिति हमने देखी दादी की, और दादियों में भी थी कि, तो नंबर में मैं सभी दादियों से, मैं तो बहुत दादियों से मिला हूँ, है ना, बल्कि 1968 से मिला, जब हमारे माता पिता पांडव भवन जाते थे, माता पिता ज्ञान में चलते थे, तो बचपन से हमारा जाना, मैं तो 9 साल का तब था, तभी से जाना शुरू हुआ, समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा, पर दादियों मिलती थी, प्यार तो करती थी ना, तो उनकी पालना तो महसूस होती थी, बड़े होके अभी याद आती है, तब तो इतना बचपन में खेल कूद बीत गया, टाइम बीत गया, कि तो वो अब बातें याद आती कि कैसे दादियों की वो नज़र, दीदी की नज़र, और जितनी हमारी दादियाँ सब पांडव भवन में आती थी, प्रोग्राम्स होते थे, है ना, तो कैसे वो इतना प्यार से, तो वो उस समय फरिश्ते लगते थे हमको, है ना, अलग ही दुनिया से अलग लगते थे, तो वो स्थिति है ना।
और उसके बाद आती है ज्वाला स्वरूप याद। तो निरंतर योगी है ना हम लोग, सर्व स्नेह सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां जब हमने कर ली ना बाबा से, एक ही से करनी है। क्या कहें, दिल बुद्धि मन और संस्कार, जब तीनों में एक बाबा समाया हो। दिल कहते ना तीन शक्तियां ना आत्मा की, कौन सी, बुद्धि मन बुद्धि संस्कार, राइट, वो उसका भी बीज क्या है, दिल, आत्मा का दिल। ये दिल नहीं, ये तो बॉडी का दिल है, आत्मा का दिल, चेतना कॉन्शियसनेस कॉन्शियस अंतरात्मा। जो कहते ना बाप, मैं बच्चों को दिल पे, बाबा कहते ना मैं बच्चों का, बच्चा मुझे कहां कौन सा स्थान पसंद है, कोई पूछे तो बाबा कहां रहता है, बाबा कहां रहता है, हमारे दिल में रहता है, ये दिल में नहीं, यहां दिल में रहता है ना। तो वो दिल चेतना ना, हमारे दिल में कौन है, तो दिल में बाबा है और बुद्धि में बाबा है। बुद्धि की दिल सच्ची साफ है, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है, और मन स्वच्छ है, और संस्कार सत्व प्रधान बनते जा रहे हैं, बन गए हैं। तन ही संस्कार किसके, ये तन किसके आधार पर बनता है, संस्कारों के आधार पर। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, उसके आधार पर शरीर का स्थूल शरीर का निर्माण होता है मां के गर्भ में। तो इस तन, या यूं कहें दिल बुद्धि मन और तन, तीनों में जब एक बाबा ही समाया हो, वो है तपस्या, वो है ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली आत्मा, राइट। तो उसमें जब उसको पहली पहली स्थिति, उसमें भी तीन स्थितियां हैं ज्वाला स्वरूप याद की, भी तीन स्थितियां हैं। पहली अशरीरी स्थिति, मैं अशरीरी आत्मा बन के जब देह और देह की दुनिया से परे मैं परम धाम में, ये दो स्थितियां बताई ना, श्रेष्ठ याद और निरंतर याद, ये स्थिति है सूक्ष्म वतन की स्थिति, जिसमें अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करते हैं। श्रेष्ठ याद है, उसको बोलते हैं स्वीट साइलेंस, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं। और निरंतर याद है आनंद की स्थिति, उसको बोलते हैं डीप साइलेंस। आत्मा खो जाती है, समा जाती है, लवलीन हो जाती है, याद में लीन हो जाती है, लीन नहीं कहेंगे, लवलीन हो जाती है आत्मा, जैसे नदी सागर में समा करके सागर बन जाती है, सागर के समान स्थिति बन जाती है, उसको बोलते हैं डीप साइलेंस। और उसके बाद आती है परम धाम की स्थिति, जहां के संकल्प रुक जाते हैं, एक से भी कम संकल्प ना, सिर्फ बाबा रह गया ना, और बाबा में भी खो गए है ना, सागर में जाके पता है क्या कहां पहुंच गए, सागर में भी जाके समा गए ना, तो वो स्थिति अशरीरी स्थिति है, संकल्प चलने बंद हो गए ना, वहां जाके संकल्प नहीं चल रहे। पॉइंट अगर एक संकल्प बाबा है तो उसमें भी 0.9 हो गया, कितना हो गया 0.9 हो गया, और शिव बाबा कौन है, जीरो है ना। तो अशरीरी आत्मा बन के मैं परंधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गया, तो वो स्थिति है ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली है, जिसमें मेरे किए हुए पाप कर्म जो है ना, देखे कर्म भोग, क्या क्या चीजें हमारे साथ, एक तो हमने जो पाप कर्म किए हैं, पांच विकारों के पाप कर्म हुए ना, एक तो उसके कारण कर्म भोग किस कारण आते हैं, पांच विकारों के वश किए हुए कर्मों के कारण, कोई भी बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा, लीवर खराब हो गया, या पेट खराब हो गया, फेफड़े की बीमारी हो गई, माइग्रेन हो गया, कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी होती है मन की या तन की, साइकोलॉजी में कुछ आपका न्यूरोसिस हो गया, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो गया है ना, ये सब बीमारियां, ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस हो गया, डिसऑर्डर हो गया, बहुत सारी बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां क्यों है, ये हमारे मन की बीमारी, ये हमारे किस कारण से होती है, पांच विकारों के वश किए कर्मों कर, राइट, उसी कारण देखे देखे कर्म भोग, देह और मन के और तन के कर्म भोग आते हैं, राइट, तंग करते हैं बीमारी के रूप में, तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, राइट। तो देखे कर्म भोग और संबंध संपर्क से भी कर्म भोग बनते, वो हिसाब किताब बनते हैं, संबंध संपर्क में जो कुछ हम गलत करते हैं, अमर्यादित करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में करते हैं, तो वहां भी तो हिसाब किताब बनते नहीं बनते। फिर देखे पदार्थ क्या होते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, मकान जायदाद है, उसमें भी क्या होता है, क्या बनते हैं, हिसाब किताब बनते हैं ना, कर्म भोग बनते हैं ना, उसमें भी तो बनेगा ना हिसाब किताब बनेगा ना। तो तो कर्मों के हिसाब किताब, संबंध संपर्क और पदार्थों के हिसाब किताब, इनसे दर्द होता है, तकलीफ होती है ना, स्थिति ऊपर नीचे होती है ना, नहीं होती। कर्म भोग से भी स्थिति ऊपर नीचे होती है और संबंध संपर्क में भी स्थिति ऊपर नीचे, पदार्थों की भी स्थिति ऊपर नीचे होगी, नहीं होगी, है ना। तो ये अशरीर स्थिति क्या करती है, हमको देखे कर्म भोग और कर्मों के हिसाब किताब, ये जो उसकी दर्द होती ना, परेशानी होती ना उसके कारण, जब हम ऐसे अशरीर बाप, अशरीर बनके अशरीर बाप से कंबाइंड हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, इतना अंदर से रिलैक्सेशन आ जाती है, उस जीरो से कंबाइंड होते हैं। जैसे नहीं आपने कभी देखा झूला होता ना, ऐसे वाला झूला होता ना, ऐसे ऊपर, याद है बचपन में बैठ के जाते ना हम लोग, ऐसे घूमता था ना ऊपर, ऊपर तक जाता, आसमान तक जाता, आसमान तक तो नहीं, काफी ऊपर, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मेलों में आजकल लगता है ना, है जी, पता नहीं यार कुछ कहते हैं, हिंडोला बोलते हैं, चंडोला क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। तो याद है जब हम ऐसे ऊपर जाते ना, ऊपर जाते थे, ऊपर जाए फिर नीचे को आएंगे तो एकदम दम निकलता था, एकदम अच्छा लगता है, एकदम रिलीज एकदम हो गया बॉडी में, होता नहीं होता, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है, एकदम रिलीज हो गए ना, आत्मा जो है ना एकदम से देह और देह से परे चलेगा, एकदम वो जीरो से जुड़ रहे हैं ना बस, एकदम से उसमें इतना रिलैक्सेशन हो जाता है, और ऐसे केमिकल निकल जाते हैं हमारी, हम तो वहां सूक्ष्म परमधाम में बाबा से ऐसे हो रहे होते, संकल्प में चल रहे होते, पर देह में परिवर्तन, आत्मा देह में ही है ना, मन बुद्धि से हम शरीर बने ना, आत्मा निकल गई क्या, आत्मा वहां चली गई क्या, आत्मा तो यही है, मन बुद्धि से हम परमधाम में पहुंचे ना, अशरीर बने ना, इसे मैंने शुरू में भी कहा ना, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को डिटैच कर, मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। ये स्थिति बार बार हमको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बाबा बार बार रोज कहते ना मुरले में, ये क्या करती है, हमको इतना रिलैक्स कर देती है, और ऐसे हमारे अंदर ऐसे 3-5 हार्मोन निकलते हैं ऐसी स्थिति में, कौन से, एक तो एंडोर्फिन निकलते हैं, एंडोर्फिन समझते हैं, अंदर मॉर्फिन होती है ना, अफीम होती है ना, अफीम, अफीम क्या करती है, नशा भी करती, कैसा भी दर्द हो दर्द खत्म हो जाता है, कैसा भी दर्द हो, हार्ट का दर्द हो, पेट का दर्द, कोई भी दर्द, कहीं का दर्द हो ना, कमर का दर्द हो, आपको फील ही नहीं होता, और ये एंडोर्फिन उस अफीम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, कितनी कितनी पावर होती है, 100 गुना पावरफुल होती है। तो ये अफीम बहुत ही, और इसकी तो इसकी आदत नहीं पड़ती है, उसकी तो आदत, इसकी भी आदत तो पड़ जाती है, जिसने एक बार अशरीर स्थिति का अभ्यास कर लिया ना, वो खींचती है बार बार, है ना, जैसे ने? जैसे नशे वाले को आदत होती ना कि वो बार बार भागता है, अपनी चीजें बेच के भी, बर्तन बेच के भी वो खरीदेगा, है ना, खाएगा उसको, है ना। तो ये क्या होता है, आदमी सारे काम छोड़ के भी क्या करेगा, जिसको एक बार वो प्रैक्टिकल स्थिति आ गई ना, इमेजिन नहीं करनी है, विजुलाइज नहीं करनी है, रियल स्थिति ऐसी बननी चाहिए, है ना। जैसे हमने कहा ना शुरू से चले ना, सहज योगी, स्वतः योगी और कर्म योगी, फिर श्रेष्ठ योगी और फिर कौन सा निरंतर योगी, और फिर ये स्थिति आती है अशरीर स्थिति, ये है ज्वाला स्वरूप याद वाली स्थिति, जिसमें एकदम देह और देह की दुनिया से परे हम चलेगा, अशरीर आत्मा बन के परमधाम अशरीर बाप से कंबाइंड हुए, तो उसमें जीरो से जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो इतना रिलैक्सेशन हो गया कि हम देह और देह की दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, है ना, ज्वाला बन गई ना एकदम से, ऐसे मतलब ज्वाला माना जो जला, जो क्या करे, ये देह और देह की दुनिया को खत्म कर दे, जैसे आज की मुरली थी ना, क्या 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 कहा बाबा ने, बृहस्पति दशा किस पर बैठती है, जो और देह की दुनिया से, देह और देह की दुनिया से परे, उस धर्म पर परे चला जाए ना, उस पर बृहस्पति, बृहस्पति बाप, तभी तो उस पर उसकी इच्छा आएगी ना, तभी तो आएगा ना करंट, इवन श्रेष्ठ योगी पे भी नहीं पड़ती है, निरंतर योगी पे भी नहीं पड़ती है ना, जो उससे भी परे चला जाए, विक्रम विनाश कहां होते हैं, ना तो सहज योगी के होते हैं, ना स्वतः योगी के होते हैं, ना कर्म योगी के होते हैं, हाँ जितना जितना हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी ना, उतना उतना हमसे पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। सहज योगी है, कभी कभी स्नेह होगा, कभी कभी नहीं भी होगा, दूसरा याद आ जाएगा, कभी कभी हो जाएगा, हम स्वतः योगी हैं, संबंध है बाबा से, महसूस हुआ कुछ संबंध हो गया, हम उसके बच्चे बन गए, कि तो फिर भी कभी कभी संबंध भूलेगा तो क्या होगा, पाप कर्म हो सकता है ना, और प्राप्ति भी कर्म योगी में कभी कभी कर्म योग है, कभी कभी नहीं भी होगा, तो पाप हो सकता है, कि तो सूक्ष्म व्रत में तो पाप नहीं हो सकता श्रेष्ठ योगी, जो स्नेह संबंध प्राप्ति तीनों उसी से है, और फिर सर्व स्नेह सर्व संबंधी सर्व कर्म, सर्व संबंधों के महिंसार वाली याद, सर्व स्नेहों के महिंसार वाली स्नेह, और सर्व प्राप्तियों के महिंसार वाली प्राप्ति, है ना। जब एक से ही है तो क्या हो सकता है, वो एकदम कैसी स्थिति है, विक्रमाजीत स्थिति है, मतलब अब उससे कोई विक्रम नहीं हो सकता है, श्रेष्ठ कर्म में नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं कि वहां को कि मेरे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, पाप कर्म खत्म नहीं होते सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म पाप कर्म कहां खत्म होते हैं, परम धाम में, परम धाम में। तो ज्वाला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप का मतलब क्या है, वो एक लगन अगन बन गई है, लगन अगन बन गई, और वो लगन में मगन हो गए, जो 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 हमारी साकार स्थिति है ना वो लगन वाली स्थिति है, और सूक्ष्म वतन वाली स्थिति मगन वाली स्थिति है, कौन सी स्थिति है, और परमधाम वाली स्थिति क्या है, अगन वाली स्थिति है, राइट। आप याद रही ऐसे साकार में सहज योगी स्वतः योगी और कर्म योगी कौन सी स्थिति है, लगन वाली स्थिति है, कौन सी, लगन लग गई है ना, पहचान हो गई, लगन लग गई है, और फिर लगन हो, लगन लगते लगते क्या हो गए, मगन हो गए, किसमें, उस एक के साथ, सहज स्नेह संबंध प्राप्ति वहीं से ले रहे हैं, अब सर्व संबंध सर्व स्नेह सर्व स्नेह सर्व संबंध सब प्राप्ति उसी से है, उसी में खोए हुए हैं, तो वो स्थिति क्या है, मगन वाली स्थिति है, उसको हम सूक्ष्म वतन वाली स्थिति कहते हैं, सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति भी कहते हैं, विदेही स्थिति भी कहते हैं, और उससे भी स्थिति क्या है, फिर अगन बन गई, अब आत्मा भाग ली, अब चाहते नहीं, बस उसमें चले गए, भाग गए ना घर से, कहां से, देखो 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 भाग गए, है ना, अशरीरी हो गए, एकदम डिटैच हो गए, अशरीर बन के आत्मा परम धाम अशरीर बाप से कंबाइंड हो गई, तो अब क्या हो गया, ऐसे पांच केमिकल बताए ना, एंडोर्फिन्स नेचुरल मॉर्फिन निकली, इतनी निकली उसमें एकदम नशा आ गया, बस नशा आई, रूहानियत आ गई, इतना नशा आ गया कि अब आत्मा को जरा भी भानी नहीं है, बस वहीं पे है, संकल्प भी नहीं चल रहे, बस उसमें वो इतना रिलैक्सेशन हो गया, कोई पेन फील नहीं हो रही, जैसे आदमी को ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं, किसी का अगर थोड़ा काटना भी हो तो क्या करते हैं, चक्कू से लगा सकते हो आप उसको काटना, छाती हार्ट का ऑपरेशन करना, बीच में छाती काटनी, हड्डी भी काटनी है ना, तब चक्कू रखो क्या होगा, रखने देगा चक्कू, हाथ डॉक्टर का सर्जन हाथ पकड़ के परे कर देगा, नहीं कर देगा, है ना, नहीं करेगा, अब जब बेहोश समझे किसी को सीरियस हालत होती है, हार्ट अटैक आता है, लंग्स में पानी भर जाता है, सांस नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, तुरंत पेशेंट को नॉकडाउन करते हैं और ट्यूब डाल के और वेंटिलेटर लगा देते हैं, और पेशेंट को जैसे थोड़ी होश आती है क्या करता है, ट्यूब निकाल के, अगर उसको होश आए, ट्यूब निकाल के गले सांस की नाली में ट्यूब डाली हुई है निकाल के बाहर कर देगा, इसलिए हाथ बांध के रखते हैं उसके, या उसको इतना सुन रखते हैं, इतना दवाइयां देके सुन रखते हैं लगातार, ताकि उसको ट्यूब निकाल के बाहर फेंक देगा, नहीं तो किसी की नाक में हाफ मुंह से रखे ट्यूब गले में सांस की नाली में डाल दो, एक बूंद पानी भी जाए तो क्या होता है, कैसी हालत होती है ना, तो वहां तो ट्यूब डाल के अंदर रखते हैं ना, तो ऑपरेशन करने के लिए क्या चाहिए, सुन करना पड़े ना पहले, तो ये जो है स्थिति अशरीर स्थिति क्या है, ये कैसी है, बेहोश करने की स्थिति है, देह और देह की दुनिया से बेहोश हो गया बिल्कुल, है ना, तो ये एंडोर्फिन क्या करता है, नशा लगा के हमको एकदम बेहोश कर देता है, नशे में आ जाती है, दर्द सारे खत्म, हार्ट का दर्द खत्म, पेट का कोई दर्द भी, कोई परेशानी, कर्मों के हिसाब किताब, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, अब बेहोश होने वाले को कोई मर रहा है, किसी को कहो तुम वो मर गया फला मर गया, क्या करेगा, तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, उसे क्या पता है, उसको कुछ हिसाब किताब पता है क्या, कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा धंधा तुम्हारा बिजनेस सारा डूब गया, तुम्हारा शेयर मार्केट जहां पैसा लगाया था पूरा जीरो हो गया, है ना, क्या करेगा, वो रोएगा जो बेहोश है, कुछ भी नहीं उसके लिए, कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो देह के कर्म भोग और कर्मों के हिसाब किताब क्या होते हैं, वो सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, डॉक्टर को कोऑपरेट करते करता कुछ भी कर लो आप, चार घंटे का उस बेहोश करने का हमने चार पांच घंटे का ऐसे दे दिया, तो चार पांच घंटे तक वो कुछ करेगा क्या, हाथ पर हिलाएगा, कितना ही काट लो, कुछ मर्जी कर लो, हार्ट को कुछ भी कर दो, कुछ भी कर लो, पेट में कुछ भी आते इधर से उधर सिल दो, काट के लगा दो, कुछ भी कर लो ना, निकाल लो, कुछ निकाल लो इसका, है ना। बोलेगा मेरा क्यों निकाल रहे हो भाई, मेरा गॉल ब्लैडर क्यों निकाल रहे हो, मेरी किडनी क्यों निकाल रहे हो, बोलेगा क्या, कुछ नहीं बोलेगा ना। तो ये हालत अशरीर स्थिति होती है, ठीक है। तो देखिए इससे क्या कर्म सहन करके, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई। चारों शक्तियों को सहनशीलता कहते हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सेव करने की शक्ति। तो ये क्या चीज है, ये बेसिकली ये क्या चीज है, ये जो है इसी को सहनशीलता कहते हैं, है ना। जब दिल सच्ची और साफ है ना, तो हमारे अंदर बुद्धि में क्या आ गई, समझ आ जाती है। बुद्धि की लाइन क्लियर किया ना, क्लियर हो गई माना, आठों शक्तियां समझ में आ गई। आठों शक्तियां क्या हो गई, क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो ये अशरीर स्थिति बन जाती। उसके बाद जो दूसरी स्थिति बनती है वो निराकार स्थिति है। कौन सी स्थिति है, जब ये स्थिति में आते हैं तो क्या होता है, इसमें रहते अभ्यास करते करते, अभ्यास करते 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 क्या होता है, मैंपन मेरापन खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है, मैंपन मेरेपन का त्याग हो जाता है। तो अशरीर स्थिति और निराकार स्थिति में क्या फर्क है, अशरीर स्थिति और निराकार स्थिति में यही फर्क है कि जब मैंपन मेरेपन का त्याग हो तो निराकार स्थिति आ जाती है। या मैं यूं कहूं 0.9 से लेके और 0.01 तक ये अशरीर स्थिति है। कौन सी स्थिति है, शिपावा क्या है, 0.0000 कुछ उसका आगे है ही नहीं, एक तो है ही नहीं उसके अंदर। तो 0.1 तक पहुंच जाओ, मतलब 99% आपके हिसाब किताब जब खत्म कर लिए ना आपने, मतलब 99, तब जाके वो निराकार स्थिति आती है। शिव बाबा को अशरीर कहते हैं क्या, कभी क्या कहते हैं, निराकार ही कहते हैं ना, वह है ही शरीर, क्या शरीर, तो उसका शरीर उसको कहते हैं जिसका शरीर हो, वो तो शरीर है ही नहीं उसका, वो तो ऐसे उसको बना देते हैं। शिव बाबा को देही माने भी कह देते हैं, आत्म माने भी कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, विधेयी भी कह देते हैं, है ना, और उसे क्या कह देते हैं, अशरीर भी कह देते हैं, निराकारी। जैसे बाप होता ना, छोटा सा बच्चा होगा तो अपने कंधे बिठा लेगा, और छोटा होगा सिर पे बिठा लेगा, है ना, नहीं। तो बाबा तो है, तो बच्चा बाप तो बड़ा ही है, किंतु छोटे को तो अपने सिर पे बिठा लेगा, थोड़ा सा बड़ा कंधे पे बिठा लेगा, नहीं। और छोटा सा होगा तो छोटा नीचे बैठ जाएगा, उसके लिए घोड़ा बन जाएगा, होता ना, देख तो मेरे से बड़ा, मेरे पे बैठ जा, घोड़ा बन के चलता है उसके लिए ना, बाप करता नहीं करता। तो ऐसे बाप क्या करता है, हमारे जैसे हम होते हैं, बाबा हमारे साथ वैसा ही रोल प्ले करता है। कहते ना मुरली में आता ना कि बाप तो सदा ही रही मानी है, बाप तो सदा ही आता मानी है, बाप तो सदा ही विदेही है। मुरली में से तो कभी कंफ्यूज भी होते ना। फिर एक दिन हमने दादी से बात कर रहे थे, गुलजार दादी से, देखो छोटा बच्चा सब बाप जैसे बच्चे के साथ करता है ना, ऐसे बाबा हम साथ साथ समाज साथ सब कुछ है, जो हम है वो भी पार्ट प्ले करता है ना। बच्चा तोतला बोलता है, बाप भी तोतला बोल के दिखाता है ना, बोलते नहीं बोलते, तो बाप भी वैसे करके, बाप तोतला थोड़ी ना, बच्चा तोतला है ना, बाप तो तोतला नहीं है, है ना। तो ऐसे मतलब बाबा हमारे साथ वैसे बन के दिखाता है। तो निराकारी जब बन जाते हैं तो मैंपन मेरेपन का त्याग होता है ना, तो वो निराकारी, निराकारी जब 0.01 और शिव बाबा 0.0 है ना, जब निराकारी आत्मा बनकर निराकारी बाप से कंबाइंड होते ना, तब क्या होता है, तब हमारे विक्रम विनाश हो, तब पापक्रम भस्म होने लगते हैं। अशरीर स्थिति में पापक्रम भस्म नहीं होते, सिर्फ हम बेहोश होते हैं। ऑपरेशन ये क्या है, अशरीर स्थिति क्या है, एनेस्थीसिया है, क्या है, एनेस्थीसिया, बेहोश करना ना। ऑपरेशन कब होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भस्म कब होते हैं, तब भस्म होते हैं, है ना। आलस्य कब भस्म होता है, अलबेलापन कब भस्म होता है, किसी का अवगुण देखना कब भस्म होता है, किसी से बदलने की भावना कब भस्म होती है। हम सदा के अलर्ट बन जाए, एक्यूरेट बन जाए, सबके गुण दिखाई देने शुरू हो जाए, हंस बन जाए, है ना, सबके प्रति रहमदिल हो जाए, कोई कितना भी गलत करे हमारे साथ, कितना भी धोखा दे दुख दे, उस पर भी रहम आए, कब होता है, निराकारी स्थिति, जिससे पे भी संशय ना हो, कभी भी अनुमान ना लगाए, सब पे निश्चय और विश्वास हो, स्वयं पे भी निश्चय विश्वास, और बाप पे भी निश्चय और विश्वास, ड्रामा पे निश्चय और विश्वास, और परिवार पे भी निश्चय विश्वास। कैसी भी हालत हो जाए, कोई कुछ भी कर दे, गलत हो जाए कि गलत कर दे, कोई बात नहीं, है ना, ऐसी स्थिति, सदा निश्चय और विश्वास, और बेफिक्र बादशाह, जरा भी चिंता नहीं, जरा भी भय भी नहीं, चिंता और भय भी भस्म हो जाए, है ना, जरा भी जल्दबाजी नहीं, धीरेता, और किसी भी ईर्ष्या द्वेष नहीं, जरा ये ऐसा आ गया, ये आगे गया, ये पीछे गया, नहीं, ये नीचे, ये आगे क्यों जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है, सबसे विश्व कल्याणकारी का भाव, सबका भला, सबका शुभ भावना, शुभ भाव सबके प्रति, ये होता है निराकारी स्थिति। इसलिए बाबा ने आखिरी दिन क्या कहा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये लास्ट की स्थिति है। असली असली ज्वालामुखी याद ये है, वो ज्वाला स्वरूप है, ये क्या है, ज्वालामुखी याद है, एकदम मुख में चले गए हम ना, किसमें, ज्वालामुख, ज्वालामुखी के अंदर चले गए, है ना। लावा जो होता है ना बाहर, ठंडा हो जाता है बाहर निकलता है लावा, लावा जब अंदर होता है तो ज्वाला, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 1600-1800 डिग्री सेल्सियस, लावा जैसे मैग्मा कहते हैं, अंदर अंदर जो होता है, और जब बाहर निकलता है तो वो वही 500-400-300-200 डिग्री का हो जाता है। एक ज्वाला स्वरूप याद हो गया ना, वो तो बाहर पर निकला लावा हो गया, खुले में आ गए ना, ज्वाला स्वरूप याद, और वो अंदर चले गए, हम कहाँ चले गए, मुख के अंदर चले गए, क्रेटर के अंदर चले गए, वो निराकारी शिव बाबा जीरो है ना, हम भी जीरो के पास, 0.001 0.001, है ना, हम भी आगे आगे उसके साथ ही, जैसे बिल्कुल संकल्पों से एकदम परे, संकल्प पूरी दुनिया एकदम, बस ऐसी स्थिति है ना, उसमें इतनी सहनशीलता आ जाती है, ऐसा नहीं कि वहां गए हम उसमें हमारे विक्रम विनाश, वहां विक्रम विनाश नहीं होते, उससे हमारे सहन करने की शक्ति बढ़ गई, कोई सामने से मारने के लिए आ रहा है, चक्कू लेके आ रहा है, बिस्तर लेके आ रहा है, ऐसे करके अभी बस कर रहा है, और आपको बस इतनी सहनशीलता आ गई, अपनी इसी स्थिति में, निराकार स्थिति में टिके हो, जरा भी नहीं फीलिंग भी नहीं आ रही, वो बंदू वो ऐसे लगा के आपके कर रहा है ना, एकदम अपने आभा मंडल में वो ऐसी स्थिति है, रूहानियत वाली स्थिति है, उसी गोली इसकी चलेगी आपके पास तक नहीं पहुंचेगी, चलेगी नहीं, पहले तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, आपको वो लाइट लाइट दिखाई देगा उसको, है ना, क्या दिखाई देगा उसको, आप दिखाई नहीं दोगे, है ना, लाइट लाइट हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, कुछ भी हो जाए वायुमंडल में, कुछ भी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, भूकंप आपको टच नहीं कर सकता है ना, वहीं रुक जाएगा, पीछे वहीं रुक जाएगा ना, राइट। इतनी सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, वो जो वेग है ना, काम विकार का वेग होता है, क्रोध का वेग, वेग में ना वेलोसिटी जोर से आती है, इंपल्स आती है ना जोर से, क्रोध कितनी जोर से आता है, लोभ कितनी जोर से आता है, मोह कितनी जोर से आता है, अहंकार कितनी जोर से, चिंता कितनी जोर से आती है, डर कितनी जोर से आता है, जल्दबाजी कितनी जोर से आती है, आलस भी जोर से आता है ना, हजार मुरली में कहो भाई साहब जाग जाओ, भाई साहब मुरली सुनो ध्यान से, फिर क्या होगा, फिर झटका नहीं, नहीं जोर से आता नहीं आता, ये सारे विकार जोर से आते हैं ना, किसी के अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो दिखाई देते रहेंगे ना, कितनी कोई हजार का इसका गुण देख लो, गुण देख लो, दिखाई देंगे नहीं दिखाई देंगे ना, इनका वेग होता है ना, चिंता का, भय का भी, जल्दबाजी का, ईर्ष्या द्वेष का वेग होता है ना, नहीं तो ये भसम, उसको सहन करने शक्ति आ गई, वेग आ रहा है, फील नहीं हो रहा है ना, समा लिया, सामना कर लिया, एक के बाद आया जा रहा है, एक के बाद एक आया जा रहा है, एक के बाद आया जा रहा है, अभी ये मरा वो दूसरा, अभी एक की डेथ हुई किसी की, थोड़ी देर दूसरे वो भी मर गया, अच्छा फिर क्या, फिर वो भी मर गया, है ना कुछ और हुआ, ये वहां ऐसा हो गया, ठीक, सहयोग करने की शक्ति, कोई डंडे से मारने की कोशिश कर, डंडे का बेचारा नीचे डंडा गिर गया, मारते मारते लो भाई साहब गिर गया, ले लो, है ना, क्योंकि आप ऐसे निराकार स्थिति में हो ना, वैसे तो आपको महसूस ही नहीं हो रहा, प्रहलाद का पता है ना, प्रहलाद की याद है ना, प्रहलाद को पहाड़ से गिराया क्या हुआ, आग में जलाया क्या हुआ, ये रियल में तो नहीं हुआ था, किंतु प्रैक्टिस हमारी हमारी बात है ना, हमारी लगन ऐसी हो प्रहलाद जैसी हो ना, हमारी याद ऐसी हो परमात्मा की, इतनी याद हो, इतनी गहरी याद हो ना, ताकि निर्विकारी, निर्विकारी मतलब अब सब विकार खत्म हो गए, विकारों का अंश खत्म हो गया, और निरहंकारी अब ऑटोमेटिक सेवा हो रही है दिन रात, और इससे ऊंची भी ऊंची एक स्थिति है ज्वाला स्वरूप, उससे भी ज्वाला स्वरूप, और उससे भी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के भी पिताजी वाली, वो कौन सी स्थिति है, क्योंकि निर्विकारी निर्विकारी बने बगैर सेवा होती नहीं है, मैं भाषण कर लूं, क्लास करा लूं, और मेरे अंदर काम भी है थोड़ा, किसी के प्रति लगाव झुकाव, काम विकार तो नहीं, लगाव है किसी से, उसके पर झुकाव है, उसके प्रभाव में हूँ, किसी लौकिक अलौकिक के प्रभाव में, किसी बड़े भाई बहन के प्रभाव में भी मालूम है। किसी के प्रभाव में तो क्या बनेंगे, प्रभावित प्रजा बनना पड़ता है उसकी। किसी के भी प्रभाव में आओ ना, किसी बड़े के भी, दादा विश्वतंत कहते थे किसी के भी प्रभाव में आओ ना उसकी प्रजा बनोगे। प्रभाव में आना तो किसके प्रभाव में आओ, सिर्फ शिव बाबा के प्रभाव में आओ। मस्तक में निराकारी आत्मा बनके निराकार बाप से कंबाइंड रहो, और नैनों में शिव बाबा को मस्तक में संभालो, और नैनों में ब्रह्मा बाबा तब दिखाई देगा, तब ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हो। बिना निराकारी बने निराकारी बाप से कंबाइंड रहोगे तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने नजर नहीं आएगा, ब्रह्मा बाबा ऐसे करता था। फिर तो अपना ही अंदर का जो इंपल्स है ना, अपने अंदर की जो आदतें हैं ना, संस्कार, वही परिलक्षित हो जाएंगे। जो आप सालों साल करते रहे वही हो जाएगा। कितना बोलते रहो फॉलो फादर करो, किताब भी रख लो, मुरली भी जेब में रख, कुछ मर्जी कर लो, साथ में मुरली सुनते रहो, कुछ नहीं होगा, कोई फॉलो। तो निराकारी बन के निराकारी बाप से कम, तब निर्विकारी स्थिति बनेगी, तब जाके निर्विकार जितना बनोगे तब तो सेवा होगी, तब चेहरे और चलने के द्वारा बाप के समान सेवा होगी, राइट। तब सेवा है, भाषण से सेवा नहीं है, क्लास कराने से सेवा नहीं है। मैं देश विदेश में चला जाऊं, सेवा कर ली मैंने, इतना कर लिया, इतने लोगों कोर्स करा लिया, वो सेवा नहीं है। बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा, बिना जितना जितना निर्विकारी बनते जाते हैं, एक निर्विकारी कोई एब्सोल्यूट स्टेज तो संपूर्ण निर्विकारी है, जैसे जैसे निर्विकारी बनते जाते हैं उतनी उतनी सेवा क्या होती जाती थी, बेहद की निस्वार्थ भाव की होती जाती है, राइट। और जब ऐसी स्थिति होती जाती है तो हमें फील आता है कि करावनार शिव बाबा है। जब करण करावनार शिव बाबा है तो तब क्या होता है, तब हमारी निरंकारी स्थिति बनती है। जब सेवा होती ना तो फील होता है मैं तो कुछ कर नहीं रहा, तो बाबा ही कर रहा है, अपने आप चेहरे चलन के द्वारा सेवा हो रही है, बोले सेवा हो रही है। ब्रह्मा बाबा ने कोई क्लासेज नहीं कराई, दादा विश्वतंत ने क्लासेज नहीं कराई, शांतामणि दादा ने क्लासेज नहीं कराई, विदेश में नहीं गई विश्वतंत दादा, कभी विदेश में नहीं गए, फिर भी अस्तर में आ गए ना, नाम आया नहीं आया, कोई विदेश जाने सेवा नहीं होती है ना, या देश में बाहर बाहर जाके सेवा करो, जाकर वहां भाषण किया, वहां भाषण, उससे सेवा नहीं होती है। सेवा हमारी स्थिति से होती है, जहां बैठे हो वहीं बैठे। ब्रह्मा बाबा बाहर नहीं, विदेश नहीं गया, पर सारे विश्व में आज किसके साक्षात्कार होते हैं अभी भी, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार। क्यों? निर्विकारी बना, निराकारी बना, निर्विकारी बना, और सेवा करते करते निरहंकारी बन गया, है ना, राइट। तो इससे ऊंची ज्वालामुखी स्टेज क्या है, मास्टर बीज रूप बाप से मास्टर बीज रूप बनके बीज रूप बाप से कंबाइन हो गए ना, बीज में सारी पावर समाई ना, सारा कलवृक्ष की जड़ में हम बाबा के साथ बैठे, सारे कलवृक्ष की सेवा भी जारी है। ये सबसे पावरफुल ज्वालामुखी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं आपको। देखो सूरज है ना, सूरज सन है ना, सन का जो कोर होता है इनर कोर, वहां पर क्या होता है, 75% हाइड्रोजन का आयन है, और फिर हीलियम गैस होती है, इसका हाइड्रोजन का एटम कितना, वेट कितना होता है, एक एटॉमिक वेट, और हीलियम का दो होता है, तो एक हाइड्रोजन दो जुड़ तो हीलियम जुड़ के हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम बनता है, और एक हीलियम टूटता है दो हाइड्रोजन बनता है, यही क्रिया चलती है। कैसे इतनी ऊर्जा कैसे पैदा हो रही है, इतनी गर्मी कैसे पैदा हो रही है, 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 2.7 करोड़, लगभग 2.5 से 3 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनता है। 100 डिग्री पे पानी उबलता है ना, कितना टेम्परेचर होता है सूरज के अंदर, कितना होता है, 2.5 से 3 करोड़ डिग्री टेम्परेचर होता है। हाइड्रोजन जुड़ना, दो जुड़ना और फिर दो टूटना, फ्यूजन होना, एटॉमिक बम होता है ना, एटॉमिक बम में क्या होता है, एटम होता है ना, एटॉमिक बम क्या है, एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो टूटता है ना, उससे 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है, कितना होता है, 100 करोड़ डिग्री मतलब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पैदा, कितनी आग पैदा होती है, मतलब उसमें तो कोई मेटल भी पिघल जाती है, कोई भी मेटल, शरीर क्या होगा, हड्डियां भी नहीं मिलती हैं। एटॉमिक बम जितनी जितनी दूर ये बचता है ना, इतना टेम्परेचर होता है, उसमें हड्डियां भी नहीं रहती हैं, सब कुछ राख हो जाता है, राख भी नहीं रहती है ना, राख भी पिघल जाती है ना, समझ रहे, सिलिका भी पिघल जाता है ना, नामो निशान खत्म हो जाता है ना। और जो हाइड्रोजन बम होता है, थर्मोन्यूक्लियर बम होता है, उसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन ना दो एटम का फ्यूजन होता है, दो फ्यूजन होता है, उससे कितनी डिग्री पैदा होती है, उससे इतनी टेम्परेचर पैदा होती है लगभग 180 डिग्री, अच्छा 180 मिलियन मतलब 18 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पैदा होता है, राइट। तो जब आत्मा से, आत्मा है ना, आत्मा तो एटम से भी सूक्ष्म है, एटम को तो फिर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नीचे जाके और उसकी गहराई में जाके देख सकते, समझ सकते हैं, आत्मा को तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हो, एटम तो प्रकृति का सबसे छोटा है, सबसे छोटा यूनिट है सारे प्रकृति की, पांचों तत्वों की सबसे छोटी, चाहे वो भूमि हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, कुछ भी, सबसे छोटा एक चीज क्या है, एटम ही है। पर आत्मा तो उससे भी अति सूक्ष्म है, आत्मा तो उसकी भी मालिक है, एटम की भी मालिक कौन है, आत्मा। तब आत्मा में जब ये विकार भरे, आत्मा में विकार भरे कहां भरे, आत्मा में भरे ना, जब आत्मा, जब सत्युंग त्रिता में जब आत्मा आती, जब ये विकार एंटर करता है, देह विमान एंटर करता है, तो क्या होता है, जोर से विखंडन होता है, धरती के टुकड़े हो जाते हैं, राइट, धरती पर भूकंप आता है, तो तब तो एक देह विमान शुरू शुरू में एंटर आता है। अब जो आत्मा, जब हम पवित्रता की, जब आत्मा पवित्र होती है, बाप परमात्मा, हम बाबा के ज्ञान को अंदर लेते हैं, समझ, ज्ञान माने समझ, सत्य की समझ आती है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और ड्रामा में जो कुछ हुआ कुछ गलत नहीं हुआ, मेरे अपने कर्मों का फल है, परमात्मा के डायरेक्शन में हुआ है, अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जो मैंने बोया था वही काट रहा हूं, राइट, ये नियम है, सबके लिए सेम है, जो बोओगे वो काटोगे, खुद ही काटना पड़ेगा, यानी खेती आपने बोई और काटे कोई और, नहीं, आपने अगर नीम बोया तो नीम आपको ही काटना पड़ेगा, आम बोया तो आम भी आपको खाना पड़ेगा, ना वो नीम के पत्ते आपको ही खाने पड़ेंगे, नीम बोली आपको ही खानी पड़ेगी, ठीक है, सुना, कोई च्वाइस ही नहीं है, और आम बोया तो आम आपको खाना ही पड़ेगा, कोई नहीं कि दो एक पेड़ इधर नीम का लगा उसमें पत्ते तोड़ के खा लूंगा, इधर के आम वो साथ वाला दूसरे का आम तोड़ के खा लेगा, ऐसा नहीं है, जो आपने बोया है कर्मों की खेती में वही आपको करना पड़ता है, राइट। तो जब आत्मा, अब हम बाबा की श्रीमत पर चल करके, जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम आत्माएं जब ऐसी बनती हैं तो क्या होता है, विकार छूटते ना, जब हमसे एटम का विखंडन होता है ना, तो कितनी एनर्जी इकट्ठी होती, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, सोचो कितनी एनर्जी रिलीज होती होगी, तो कितना बताया मैंने, 100 करोड़ 100 बिलियन मतलब 10 करोड़ डिग्री है ना, वो तो कितनी एटॉमिक एनर्जी, फिर कितनी एनर्जी आपके अंदर, कितनी ज्ञान की एनर्जी, कितनी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान, सारे विश्व को परिवर्तन करने वाली नहीं होगी। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा तो क्या होगा, निराकार आत्मा निराकार बाप से कंबाइंड होगी तो क्या होगा, कितनी, ये तो फ्यूजन हो गया ना, थर्मोन्यूक्लियर बम बन गया, नहीं बन गया, कितना डिग्री हो गई, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सारा विश्व प्रकृति के पांच तत्व परिवर्तन होंगे, नहीं होंगे, होगा नहीं होगा। तो ये अपने अक्षर बुद्धि में याद रखो कि मेरी स्थिति कैसी है, ज्वाला स्वरूप माना संगठन, एक एक लकड़ी, एक लकड़ी जलाई उस पर सीढ़ी बना सकते हो, एक लकड़ी जलाई चूल्हे में रख दी, ऊपर वो रख दी, एक बर्तन में खिचड़ी रख दी, बनेगी खिचड़ी, एक 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 लकड़ी चला के रख दी, कई लकड़ी लगा तो ज्वाला, कई लकड़ी जलेंगी तो तभी हमें संगठन में ज्वाला स्वरूप से दी चाहिए। हम बहुत सारे जब भट्टी क्यों करते हैं, बहुत सारी आत्माएं एक ही संकल्प लेके बैठती ना तो ज्वाला स्वरूप बनती है स्थिति, राइट, है ना, ज्वाला स्वरूप तब बनती है। तो सबसे बड़ी बात जो है, लास्ट में मैं बात को रिपीट कर लेता हूं, लगन में मगन और अग्न कब जागृत होगी, ज्वाला स्वरूप बनेगी कैसे, अब हमको एक सबको पूरा क्लियर है ना, क्या लगन है हमको, कौन सी लगन लगी हुई बताओ, कौन सी लगन लगी बताओ? हाँ, अब हमको कहां जाना है? वापस घर जाना है, लगन है इसकी, क्लियर हो गया? नहीं लगा, अभी अभी रुकना है थोड़े दिन और, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल रुकने वाले हो, है ना? अभी तो एटम बम से तैयार बैठे हैं, नहीं बैठे? ये तो बाबा ने कहा ना आज की मुरली में, पांडवों के कारण कौन रुके हुए? यादव, यादव माना कौन? यूरोप वासी ना। ट्रंप रुका हुआ है, पुतिन रुका हुआ है ना? नहीं, अब पुतिन के पास कितनी पावर है? 6,000 से ज्यादा एटॉमिक बम है। वो अकेला ही धरती को 10 बार खत्म कर सकता है, पूरी धरती को 10 बार खत्म कर सकता है अकेला। और फिर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश क्या कर रहा है? उसको कई छोटे छोटे ड्रोन मार मार के उसको कभी उड़ा दिया, कभी उड़ा दिया, कभी उड़ा दिया। अब पुतिन को गुस्सा, अगर हमारी स्थिति पावरफुल हो जाए तो क्या हो? हा? उसको एकदम मन एकाग्र हो जाए ना, बस अब मुझे खत्म करना है, यूक्रेन खत्म करो, यूरोप भी खत्म कर दूंगा पूरा, नहीं? और सब सेट है उसका, क्या होगा? कितनी देर लगेगी? किया 10 मिनट के अंदर सब जगह पहुंच जाएंगे बम, नहीं? और वहां जहां जहां मारेगा वहां से वापस भी आएंगे, नहीं आएंगे? अब 5,000 अमेरिका के पास भी है और देशों के पास भी है, तो क्या होगा? ये हमारी स्थिति कमजोर है। बाबा कहते हैं कभी 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 थोड़ी थोड़ी आत्माएं ना, थोड़ी थोड़ी आत्माएं ना ग्रुप में थोड़ी पावरफुल योग करती है, उसके क्या लड़ाई शुरू होती है, थोड़ा आग तेज होती है, फिर क्या होता है, थोड़ा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर देते हैं पांडव, है ना? पांडव और ब्राह्मण कुछ ना कुछ कहीं उल्टा सीधा डिसर्विस कर दी, होता ना कभी देखा हो यज्ञ में भी, कभी डिसर्विस हो जाती है, सेंटर पर भी डिसर्विस हो जाती है, क्या होता है, आग ठंडी समझौता हो जाता है ना? फिर देखा अभी थोड़ा सा योग फिर पकड़ते हैं, फिर समझौता टूट जाता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इतनी देर में फिर थोड़ा सा कुछ तपस्या होती है, भट्टी वट्टी हुई, है ना, पांडव वन में हुई, सेंटर में भट्टी हुई, फिर थोड़ी आग ठंडी, फिर थोड़ी आग पकड़ी, फिर ठंडी हो गई, है ना? अगर सारे ये सबके अंदर लगाना, अब वापिस घर जाना है, क्योंकि हम कौन है? वापिस घर जाना, वापिस कहाँ जाना है? कौन कहाँ जाना है? सूक्ष्म वतन में जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो निराकारी बनना पड़े, जहां जाना वैसा स्वरूप तो बनाना पड़े, नहीं बनाना पड़े, बनाना पड़े, वैसा स्वरूप तो बनाना पड़ेगा। तब जब निराकारी, मुझे निराकारी यहां बनना है, तो सहज योगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लगन में अब मुझे क्या है? बाबा है निराकारी, तो मुझे उसमें उसके जैसा बनने के लिए क्या, उससे मगन रहना पड़ेगा, सर्व संबंधों से, सर्व स्नेही, सर्व संबंधी और सर्व प्राप्ति उसी से है। कोई देहधारी कर सकता है मुझे? स्नेह दे सकता है? स्नेह संबंध और प्राप्ति अंदर है, बाहर नहीं है। शांति भी अंदर ही है, प्यार भी अंदर ही है, सुख भी अंदर ही है, आनंद भी अंदर ही है, शक्तियां भी अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर से सुख मिलता है क्या? बाहर से प्यार कोई करता है क्या? इतना सा प्यार करेगा, मार कितनी मिलेगी? बहुत सारी मार मिलेगी ना। बच्चा भी प्यार करता है ना, फिर दुख भी बहुत देता है। अभी थोड़ी देर में कुछ से तो बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे, ऐसा बोलेंगे, आपको ना ना रहा जाएगा ना मरा जाएगा, है ना? ऐसी स्थिति हो जाएगी ना, मरे अब मरे ना रह सकते हैं ना मर सकते हैं, नहीं ना जी सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं ना, तो ऐसी स्थिति हो जाती है ना। तो दुनिया में प्यार ना शांति है, ना स्नेह है, ना प्यार, कुछ भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, सुख भी नहीं है, एक वही है सब कुछ है। तो ये पक्का हो जाना क्या क्या चीज, सहज 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 याद, स्वतः याद और कर्म योग, श्रेष्ठ याद और निरंतर याद। तो वो स्थिति जो ना हमारी जो मगन हो जाए उसमें, ये बता ना कैसे, ये मगन की स्थिति है ना, सूक्ष्म वतन मगन है, वो लगन है ना? लगन लगेगी तो हम उसमें करेंगे ना तो उसी से स्नेह संबंध प्राप्ति उसी से करेंगे, और फिर जब ऊपर जाएंगे तो मगन हो जाएंगे, और फिर उसको अगन बन जाए, क्योंकि खाली मुझे नहीं जाना है, क्या करना है, सबको वापस ले जाना है, क्या करना है? तो सबको क्या करना पड़ेगा, सबको निराकारी बनाना पड़ेगा। पहले मैं बनूं, एग्जाम्पल बने तब तो खरीदेंगे। MR आते ना हमारे पास, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना, सैंपल लेके आते हैं, डॉक्टर साहब ट्राई करके देखो ये दवाई बहुत अच्छी है, जो आप दवाई यूज करो उस ब्रांड से बहुत अच्छा है, ये नई दवाई आई है ना, वो सैंपल हम यूज करके देखते हैं मरीज पे, खुद पे भी करके देखते हैं, हाँ दवाई तो अच्छी है, असर तो कर रही है, फिर हम लिखते हैं, तभी तो लिखते हैं, है ना? जब मेरे को देखेंगे वैसे ये था, ये बंदा ऐसा था, अब तो कैसा बन गया है, जब से बाबा का बना ना, जब से ब्रह्म कुमारी मिली उसका शक्ल ही बदल गया, चेहरा ही बदल गया, व्यवहार ही बदल गया, घर वाले भी कहेंगे बदल गया, तब क्या होता है? तब उसका असर निराकार स्थिति का असर कहां पड़ता है? सारे विश्व में पड़ता है ना। जहां भी आत्माएं बैठे हैं, बीच में कल्प ऋषि जड़ में पहुंचे ना, हम लोग जड़ में हर आत्मा को पालना मिल, जो चाहिए जिसको वो मिल रहा है ना। मैं कल्प जड़ बाबा से कंबाइंड हो गया, मास्टर बीज रूप स्थिति सबसे ज्वालामुखी याद है, सबसे पावरफुल याद वही है। या यूं कहें आत्मा परमात्मा का मिलन, कौन सी याद है? वो एटॉमिक थर्मोन्यूक्लियर बम वाली याद है ना, कौन सी वाली? हाइड्रोजन बम वाली याद है ना, है ना, फ्यूजन हो रहा ना, आत्मा परमात्मा मिलन हो रहा ना, परमात्म बम है ना वो तो, है ना, आत्मा का बम तो आत्मिक बम तो ही है, वो परमात्म बम है ना, हाइड्रोजन बम है ना, परमात्म बम है ना, वो पावरफुल बम है ना, हम ऐसे बन गए ना तो क्या सारे कल विश्व सकाश पहुंच रहे ना। जिस आत्मा को जो चाहिए वो मिल रहा है, बैठे बैठे मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भाषण भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस मैं बाबा की याद में बैठा हूं, बाबा से कमांडो के प्रम था, मास्टर बीज रूप बीज रूप बाप से बीज रूप, बीच में सब शक्ति समाई ना, पूरा पेड़ ही समाया हुआ ना, सारे विश्व सकाश आ रहा ना, तो ऑटोमेटिक मेरी स्थिति आ रही ना। तो इसमें क्या, अब भी दो स्थिति चाहिए, दो बात चाहिए, अब मन और बुद्धि को दो बात चाहिए। क्या बात चाहिए? पहली बात चाहिए मुझे, एक तो अचानक कुछ विचार आ रहा है, इसको देख के विचार आएगा, कुछ होगा तो विचार आएगा नहीं, और फिर एक तो ब्रेक लगाने की शक्ति चाहिए, और ब्रेक लगाने की शक्ति, ब्रेक ना लगे तो क्या हो, मोड़ने की शक्ति चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए? ब्रेक लगा दो, सामने से कुछ आ रहा है, कोई विचार है तो ब्रेक लगा दो, भाई ये विचार आ रहा है अंदर से आ रहा है या बाहर देख के किसी को आ रहा है, और दूसरा विचार एकदम आ गया, सामने आ गया तो क्या करो, मन बुद्धि को मोड़ दो, तो मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा ना, तो शक्ति जमा होगी, शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा होगी, तब जमा होगी शक्ति, ठीक है ना, जमा होगी तो क्या होगा, तब तब दिल सच्ची साफ होती जाएगी। दिल जितनी लगन लग जाएगी ना, जितनी बाबा से लगन लगी ना, तो दिल सच्ची बाबा दिल में आ जाएगा, है ना। दिव्य ब्राह्मण जन्म याद रखें कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मुझको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, तो मेरे दिल में कौन बैठा है? सच्चे की सत्य की समझ का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सच्चे स्नेह का सागर, अत्यंत जो बाबा आठ शक्ति है ना, सात एनर्जी है ना, उसका सागर महसूस करते रहो। बाबा की श्रीमत क्या है? मन क्या है? पवित्र भव, योगी भव। तो इसको कहते हैं सच्चे दिल, जिस दिल में बाबा के अलावा कोई और ना हो, सात दिल मन, जिस दिल में श्रीमत के अलावा मन मत परमत जरा भी ना हो, बस ये दो चीज हो ना, तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का चरित्र खुल गया। ये पहली पहली गिफ्ट है दिव्य ब्राह्मण जन्म की, तो मुरली समझ में आनी शुरू हो गई, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, सच्चा स्नेह आ गया, सच्चा विश्व के सर्वात्मा के स्नेह आ गया, तो क्या हो गया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो गई, हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गया, अत्यंत सुख की अनुभूति हो गई, और सर्व संबंधों की अनुभूति कभी बाबा गोद में तो आनंद की अनुभूति हो गई, समझता है ना, सर्व स्नेही सर्व संबंधी आनंद की अनुभूति, तो फिर आनंद से कहां पहुंच गए, परमधाम में पहुंच गए। तो इस तरह से हम करेंगे तो क्या होगा, सत्य को परखने शक्ति जागृत होती जाएगी, मतलब हजारों सत्य अंदर बाहर फड़ा पड़ा सत्य दुनिया में, इसमें सत्य क्या है, परखने की शक्ति और सही निर्णय करने में दिव्य बुद्धि, ये दो शक्ति एक्टिव होते क्या होगा, विस्तार को साथ, हम देव और देखे दुनिया से मन बुद्धि को सिमट के कहां पहुंच जाएंगे, बाप दादा की सारूपी गोद में सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, बाबा से विभिन्न संबंधों का अनुभव किया, वहां से हम कहां पहुंच गए, आनंद में पहुंच गए, लवलीन हो गए, लवलीन होकर अश्वरी बन गए, परमधाम घर आ गए, अश्वरी बन गए, अश्वरी बने तो अपने अंदर सहनशीलता आ गई, चित्त शांत हो गया, ये सब कॉन्शियस माइंड चित्त शांत हुआ ना, अब मन में मुरली चलेगी, अब मुरली क्या चलेगी, दिन सारा दिन मुरली चलेगी, बाबा ने क्या कहा था, बृहस्पति की दशा है मेरे पास, है बृहस्पति दशा, देव देव के संबंध का चिंतन तो नहीं चल रहा, बार बार आएगा बृहस्पति, मेरे चेक एंड चेंज करेंगे ना, बृहस्पति दशा है, बृहस्पति है, बैठा है अंदर बृहस्पति, है ना, दिव्य ब्राह्मण जन्म याद है, तो बार बार उसके लगन लगन अगन में, लगन क्या बने, इसी लगन में मगन रहे, मुरली में आज क्या कहा, क्या वरदान था, उसी मगन रहेंगे, वो अगन बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा जैसे पहले मगन होंगे ना, तो संकल्प क्या होंगे, भावना परिवर्तन, हमारी भावना से वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचेंगे, बाबा मल्टीप्लाई करके पदम गुणा, कहते बाबा याद से याद मिलती है ना, जो मुझे याद करता मैं उसको पदम गुणा याद करता हूं, तो बाबा से पदम गुणा होकर हमारे पास आएंगे, बाबा के पास क्या है, साक्षी दृष्टा स्थिति, पवित्रता, शांति, चसने, उसमें हम घूमते रहेंगे तो वृत्ति बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति कराएगी, और उसमें रहते रहते क्या होगा, और जैसे पंखा घूमता है ना, और घूमेंगे तो क्या होगा, हमारा अशरीर स्थिति बन जाएगी, ज्वाला स्वरूप बन जाएंगे, अशरीर बनेंगे। अशरीर बनने से हमारे अंदर क्या होगा, देव इस कर्म करते देह और देह की दुनिया में, क्योंकि मन के द्वारा बुद्धि में समझ है, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो मन मना भाव मन में क्या रहा है अभी, विचार पाप कहां भरे हुए हैं मन में और संस्कारों में, तो मन के द्वारा खत्म करने हैं हमको संस्कार। ठीक है, जब मन के द्वारा संस्कार खत्म करेंगे ना तो परिवर्तन होगा, तो संस्कार परिवर्तन होंगे तब हमारे सब हमारे अंदर से उसमें हमारे जो कर्म करेंगे ना वो रिकॉर्ड होंगे, तब नई स्मृतियां रिकॉर्ड होंगी, ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप बनते जाएंगे और हमारे अंदर शरीर बनेंगे, निराकारी बनेंगे, निर्विकारी स्थिति होगी, वो निर्विकारी स्थिति में जो जो कर्म करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो हमारी स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे और बनते बनते हम क्या हो जाएंगे फिर सर्वगुण, जैसे ना जब हम अग्नि प्रज्वलित होती है ना तो क्या होता है, एक तो पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार भस्म हो जाएंगे तैसे जन्मों के, और दूसरा कुंदन सोना, जैसे जब सोने गलाते हैं ना उसमें अलॉय क्या होती है, सोने का टेम्परेचर कितना है, सोना पिघलता है 1064 डिग्री पे, और चांदी कितने पिघलती है 862 पे, जब पिघलेगा सोना पिघलेगा उससे पहले क्या पिघलेगी, चांदी अलग हो जाएगी, चांदी पहले निकल गई अलग होगी नहीं, चांदी निकल गई अलग निकल जाएगी, अलग खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे आग की ज्वाला बढ़ेगी ना तो हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, लोहा भी निकल जाएगा, कॉपर भी निकल जाएगा, खाली सोना बचेगा, मतलब तो हमारे अंदर से वो सर्वगुण धारण होते जाएंगे, सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी बनते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे विक्रम भस्म होते जाएंगे सत्य हमारे अंदर दैवी गुणों की स्थापना होती जाएगी, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी, तो ये स्थिति हमारी बनती जाएगी, राइट। तो इस तरह से हमारे अंदर डबल फायदा, ज्वाला स्वरूप शक्ति योग अग्नि से क्या होगा, ज्वाला स्वरूप अग्नि से हमारे अंदर पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार खत्म होंगे, साथ साथ हमारी स्थिति गोल्डन बनती जाएगी ना, कुंदन बनती जाएगी, ऐसी स्थिति बनती जाएगी, और जो आत्माएं कमजोर हैं उनके सामने में सैंपल बनते जाएंगे और उनको भी शांति के वाइब्रेशन, उनके भी विकर्म विनाशक होते जाएंगे, हम अपने निर्विघ्न बनेंगे और विघ्न विनाशक बनेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें सेवा करेंगे स्थिति बनेगी। तो ये ज्वाला स्वरूप याद सबको समझ में आई कैसी है, कहाँ से शुरू करेंगे, सहज याद, स्वतः याद और कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी, निरंतर योगी, और फिर ज्वाला स्वरूप में कितनी बातें हैं, अशरीरी, निराकारी और बीज रूप, राइट। तो तीन स्थितियां जो है ये कौन सी स्थितियां, ज्वाला स्वरूप याद की है, पहले ज्वाला स्वरूप याद है, फिर मुखी है, ज्वालामुखी है, और उसके बाद क्या है, फिर तो वो है वाली स्थिति, कौन सी वाली, हाइड्रोजन बम वाली ना, आत्मा परमात्मा से मिलन हुई तो क्या बन गई, हाइड्रोजन बम बन गया ना, परमात्म बम बन गया, क्या बन गया, परमात्म बम बन गया ना, परमात्म बम बन गया तो हाँ, ये आत्मा ये आत्मिक बम है, अशरीर स्थिति आत्मिक बम है, फिर उसके बाद भी थोड़ा सा और बड़ा बम है, और उसके बाद तो परमात्म बम है। ठीक है, तो ये है ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि। चलिए अभी अभ्यास करते हैं, हमारे पास है 10 मिनट, सीधे होके बैठ जाओ, बस अभी सीधे चले जाओ, है ना, यहां से क्या करेंगे अभ्यास करते हुए, सहज याद, सब स्नेह उसके साथ संबंध, सब संबंध उसके साथ, सर्व प्राप्तियां उससे, कर्म योगी, और फिर उसके बाद श्रेष्ठ योगी, अतीन्द्रिय सुख, आत्मा परमात्मा में सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाओ बाबा के पास, फिर लवलीन हो जाओ, नदी सागर में समा के सागर बन गई, फिर अशरीर बन जाओ, बेहोश हो जाओगे देव और देह की दुनिया से, फिर निराकारी हो जाओ, ये असली ज्वालामुखी याद है। और लास्ट में मास्टर बीज रूप बन जाओ, ये परमात्मा बम है। देखो जब योग करते हैं ना, हम याद करते हैं ना, ध्यान रखना है कि हमारे जो नेगेटिव संकल्प है ना, हर संकल्प में ऊर्जा होती है ना, अगर हम देह और देह के दुनिया के संकल्प करते हैं ना, उससे हमारे अंदर अशांति, दुख और रोग, तन और मन के रोग पैदा होते हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा है ना, अंदर परेशानी पैदा करती है। और पॉजिटिव संकल्प ना, बाबा की श्रीमत पे संकल्प जब करते हैं तो हमें इस दुनिया में अशुद्ध संकल्प से शुद्ध संकल्प करने होते हैं और सूक्ष्म वतन में भी शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्पों से हम श्रेष्ठ योगी और निरंतर योगी बनते और परम धाम में संकल्प चलते नहीं है। ठीक है, तो परम धाम में संकल्प नहीं करने होते। तो यहां से लेकर सूक्ष्म वतन तक हमें क्या करने होते हैं? शुद्ध संकल्प, मतलब बाबा की श्रीमत पर संकल्प करते हैं ना। ऐसे कहीं हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं ना, बस सामने देखते रहते हैं, वो टाइम वेस्ट होता है ना। तो वहां ले जाके जब आप खो जाओ ना, निरंतर योगी बन जाओ ना, समा जाओ, लवलीन हो जाओ, वहां तक आपको संकल्प करने होते हैं, शुद्ध संकल्प, राइट। कई भाई बहन ऐसे बैठ जाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, कहीं भी नहीं पहुंचते हैं, राइट। या तो नींद आ जाती है, या तो हम थोड़ी देर के लिए अनुभूति होती है या विजुलाइजेशन करते हैं, किंतु संकल्प के आधार पे हमें एनर्जी मिलती है। मुझे ध्यान रखना, ठीक है। ओम शिव।
नॉन स्टॉप फ्लुएंसी, अनर्गल ज्ञान की धारा बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे, ऐसा मनन, चिंतन, मंथन, किन शब्दों में धन्यवाद करूं मैं आपका,